थैंक यू सो मच। अब मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि इस नेचर को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने निपुंज भाई के अंदर इस तरह का स्पिरिट और इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह के चीज़ पैदा की जिससे इतने लोगों को कनेक्ट करने का, इतने लोगों को एक साथ जुड़ने का, इतने लोगों को एक साथ ऐसे मिलने का नहीं, एक साथ जुड़ने का मौका मिला। और मैं निपुंज भाई और पूरी टीम को और आप सबको थैंक यू बोलती हूँ, वो इसके लिए कि मैं शायद सोचती थी कि मैं उत्तराखंड के वो भी बिल्कुल लास्ट कॉर्नर के गांव में, और मैं वहाँ से देखने के लिए, समझने के लिए अपने बच्चों के साथ में, अपनी यूथ टीम के साथ में इंडिया के बहुत सारे जगहों पे एक एक महीने के लिए जाते हैं हम लोग, लेकिन जीने के लिए हमको लगता था कि ठीक है नहीं, ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना, ये पॉसिबिलिटी देखना, क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंसेस हैं दुनिया में, समाज में, सोसाइटी में, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैं सचमुच में मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि इतने सारे लोग अपने इनर फ्लावरिंग की पॉसिबिलिटी को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए साथ में जुड़े हुए हैं, साथ में हैं। तो एक्चुअली यात्रा तो कैसे इंस्पायर हुए, कहाँ से इंस्पायर हुए और कैसे इस तरह के चीज़ों में कैसा इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, उसको लेकर के कोई ऐसा कोई खास टर्निंग पॉइंट ऐसा नहीं है कि जहाँ पर से पूरा जीवन चेंज हुआ, लेकिन जिस तरह से सो कॉल्ड स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन को लेकर के मेरी भी अपनी यात्रा थी, और स्कूल में, घर पे, घर बिल्कुल मेरा बिल्कुल इंटीरियर गांव में है जहाँ पे आजकल तो खूब ठंड है, खूब बर्फ़ गिरी हुई है, तो वहाँ पे मेरा गांव है, वहीं पे हम लोगों के 30 बच्चे और हमारा बड़े बच्चे सब मिलके 35 लोग हम लोग साथ में रहते हैं, वहीं पे मेरा घर भी है। तो कुछ बहुत संयोग की बात है कि मेरे घर में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट रही शुरू से कि मेरे दादी दादा सब लोगों को इस तरह के इंटरेस्ट था कि अच्छा इंसान बनना या इंसान की खूबियों को देखना, दूसरों की मदद करना, तो वो बोलते थे लेकिन बच्चों के मन पे जो असर पड़ता है वो जो उनका सुपरफिशियल ब्रेन होता है उस पर बहुत असर नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं गहरे में हमारा जो कोडिफिकेशन होता है वो हो जाता है। तो ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया, और मैंने 12th किया अपने गांव से ही, और उस ड्यूरेशन में मुझे ये ज़िंदगी की छोटी छोटी घटनाएं वापस मुझे रिकॉल हुई जब मैंने ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना, समझना शुरू किया। तो ये बहुत छोटी छोटी सी घटनाएं कि मेरी दादी बोलती है अभी कि एक बार हम लोगों को वडोदरा में बैठ करके या दिल्ली बॉम्बे में बैठ करके ऐसे सोचना, और हम लोग भी जिस एक्सट्रीम में पढ़ाई करते हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें समझाया जाता है, वहाँ पर से ऐसी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है, जो कंपैशन, जो एनर्जी फील करना, जो नेचर को फील करना हम लोग सोचते हैं। तो मेरी दादी बोलती है कि वो तीन लोग कोई गाय के साथ गए हुए थे, और वो तीनों अभी मिलते हैं आपस में, और मेरी दादी 90 है अभी, तो वो तीनों लोग गाय के साथ में गए हुए थे और उन्हें बहुत प्यास लग गई, और उनको कहीं भी, कहीं दूर दूर तक पानी नहीं था, उनको कहीं पानी पीने जाना था। तो बोलती है कि उनके गांव में, जैसे सब गांवों में देवी देवता सारे बैठे होते हैं, सारे मंदिर मठ बनाए रहते हैं, वैसे गांव में भी एक छोटा मंदिर था, तो उनको बोलते थे गौरजामा अगर तू सच में, एक लकड़ी गाड़ते हैं, बोलते हैं गौरजामा अगर तू सचमुच में है इस धरती पर, यानी कि वो नेचर को पुकार रहे हैं, अगर तो सचमुच में है इस धरती पे तो यहाँ पर पानी निकलेगा, और बच्चे ऐसे बोल के चले जाते हैं, 10-12-15 साल के बच्चे ऐसे बोल के फिर निकल जाते हैं, वहाँ से चले जाते, खूब प्यासे हैं, घर आना है तो बहुत दूर है, तब तक प्यास लग जाएगी बहुत, फिर वापस जाते हैं, वो लकड़ी को निकालते हैं और वहाँ पर से पानी का फवारा छूटता है। मेरी कोई 100 साल 500 साल पुरानी कहानी नहीं, मेरी दादी की कहानी। तो वो बोलते वहाँ से पानी निकला, तीनों लोग बताते खूब रोते हैं बैठ के, और उन्होंने खूब पानी पिया, मुंह धुला खूब अच्छे से, वो गर्मी से राहत पाई, पहाड़ों में इतनी गर्मी होती है मैक्सिमम जितना अभी यहाँ पे है, तो उन्होंने वो गर्मी से निजात पाई और उसके बाद वो पानी फिर से ख़त्म हो गया। तो संभवतः तो वो स्प्रिट मुझे जो आज क्लिक करता है कि इन लोगों के बीच में और गांव में उस सोसाइटी में उन कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतनी सरलता को जीते हैं, इतने इतनी संभावनाओं को जीते हैं, जहाँ पर कि हम लोगों का कोई भी साइंस फेल हो सकता है, किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन फेल हो सकता है, किसी तरह का कोई हमारे जो एक रैशनल माइंड जो हमारा बोलता है ऐसे कैसे पॉसिबल है, मुझे भी नहीं पता है ऐसे कैसे पॉसिबल है, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि उस टाइम पे जिस जो नेचर को हम अलाउ करते हैं अपने साथ कुछ करने के लिए वो करता है संभवतः। तो ऐसी घटनाएं अपनी ज़िंदगी में जब अपने आप को देखना समझना शुरू किया, मैंने 12th करने के बाद घर वालों को बहुत नाराज़ करके और बोल दिया कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, 12th के आगे मुझे नहीं पढ़ना है, आगे कॉलेज नहीं करना है। बाद में किया मैंने केवल उनको डिग्री पकड़ा, उन्होंने मुझे बोला कि इसके बाद 4 साल तक तो मैं बिल्कुल कॉलेज नहीं गई और मैं जा करके ये एक गांधी इंस्टीट्यूट में चले गई। और उनको मैंने उन्होंने मुझे बाद में रिक्वेस्ट करके बोला केवल मेरे मौसा जी ने, क्योंकि हम 5, 6, 7, 8 लोगों के कोई बेटियां नहीं है, तो उनको मुझ में शायद कुछ संभावना थी दिखी कि ये शायद बेटी की तरह से हमको विदा करने के लिए पालने के लिए कुछ संभावना होगी। तो उन्होंने मुझे जैसे डिग्री पकड़ानी थी मैंने उनको डिग्री पकड़ा दी थी अगले 4 साल के बाद में ब्रेक करके, और कॉलेज नहीं गई उसके बीच में भी, तो वो केवल एग्ज़ाम दिया डिग्री पकड़ाई उनको वापस, मैं उस ड्यूरेशन में भी अपने काम में लगी हुई थी। तो वहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन है कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल करके, उसमें मैंने 6 साल तक एक यूथ कैंप ऑर्गेनाइज किया साधना कोर्स करके। तो मैं मुझे अच्छा लग आज मुझे ये अच्छा लग रहा है कि इस तरह की बातों को समझने के लिए अदरवाइज कुछ मंच पे जाओ, कुछ माइक पकड़ो, और अभी एजुकेशन में ये फलाना हो गया है, एजुकेशन सिस्टम खराब हो गया, लेकिन वो सीड कहाँ से हम बच्चों के अंदर डालें जहाँ से उन बच्चों के अंदर ये संभावना है कि उनके ब्रेन की फुलेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है। जब हम उनको स्पेस देंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या है। हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं ऐसे कि अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं तो उसको कैसे समझ में आएगा, तो आता है उनको समझ में, लेकिन पढ़ाने का भी एक वे होता है, समझाने का भी एक वे होता है। तो हम लोगों ने जो मैं समझी हूँ इस पूरे प्रोसेस में कि एजुकेशन इज़ नॉट एक्युमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, कि हम लोगों ने बहुत सारे आज के डेट में तो इसका कोई वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट में आपको सारे के सारे जो जानकारी है, जो सारे इंफॉर्मेशन है वो उसमें, बच्चों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, शायद अपना हम लोगों को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से कि एजुकेशन मीन्स लर्निंग, तो हमारे अंदर सीखने की प्रवृत्ति, सीखने की जिज्ञासा कैसे शुरू हो वो हमको सीखना होगा, वो हमको बच्चों को सिखाना होगा। जब बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है वो अपने आप सीखते हैं। तो ये हम लोगों का एक जो जेन्युइन काम हमारे साथ में रहा है, इन 30 बच्चों के ऐसे कुछ ग्रुप अभी निकल के गए हैं, तो अभी इनमें से 2 बच्चे हमारे साथ में हैं जिनको हमने कभी स्कूल भी नहीं भेजा, इन 30 के 30 को नहीं भेजा है, लेकिन उन बच्चों के साथ में भी के 4 साल के बच्चे वो साथ में आ गए थे, उनको कभी भी स्कूल नहीं भेजा है। तो उस पूरे ड्यूरेशन में उनको हम लोगों ने अल्फ़ाबेट भी नहीं सिखाए हैं, ABCDA OR ये सारा कुछ नहीं सिखाया है, लेकिन जो ये क्वेश्चन आना है कि आप इस बुक में क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी ये एक बच्ची उनमें से है जिसने शायद 3000 बुक पढ़ ली होंगी अपने लाइब्रेरी से, 3000 को अभी वो 11, 12 ईयर्स के 14 ईयर्स अभी है, तो उसने 3000 बुक्स उसकी कंप्लीट हो गए होंगे। अगर आप इतने लोगों के बीच में भी अगर उसके पास बुक्स दे दें आप, तो वो बुक पढ़ लेंगे। 4 साल की बच्ची जब हमारे पास आई थी तो वो ऐसे बोलती थी कि उसके पेरेंट्स ने ये बोला ये स्कूल जाने के लिए छिपती है, मतलब हद होती है 4 साल का बच्चा स्कूल जाने के लिए छिपता है, इतना क्या क्या कितना इम्पोज किया है हमारे ऊपर एजुकेशन को कि हम उसके मीनिंग को, कि बच्चे को रास्ते से छिपना पड़ता है, बच्चा रास्ते से छिपता नहीं है एक्चुअली, वो और चीज़ों ये नेचर को देखना पसंद करता है, उसके साथ खेलना पसंद करता है, उसके साथ जीना पसंद करता है, वो छिपता नहीं है एक्चुअली। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें आई जो इस पूरे एक्सप्लोरेशन के बीच में हमें समझ में आई। तो इस पूरे काम में हम लोग मेनली जो करते हैं कि बच्चों के साथ में साइलेंस, डायलॉग, सेल्फ लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन, चार चार कंपोनेंट में हमारा पूरा दिन जाता है। तो उसमें हम लोग जो साइलेंस में बच्चे कभी, वैसे तो पर डे तो 1 घंटे से 2 घंटे उनका साइलेंस आवर रहता है, लेकिन उसके अलावा कि अगर बच्चे को ऐसा मन है, उसने अगर बोला है, आपस में बात किया है कि अब हमें अभी 2 दिन साइलेंट रहना है, 2 दिन मौन रहना है, तो ये हम लोग ये सोचते भी नहीं हैं कि बच्चे 2 मिनट मौन कैसे रह सकते हैं। तो कभी ऐसे संभावनाओं की तरफ हमारा दिमाग, क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट पे उनको स्पेस देते हैं तब इस तरह की संभावनाएं निकल के भी आती है। तो हमारे यहाँ पे बच्चे कभी 10 डेज पूरे कंप्लीट साइलेंट, नॉर्मल साइलेंस एकदम, कभी 15 डेज में, एक बार हमने 15वें दिन में उस बच्चे को वो करके बोला, हमें लगा कि पता नहीं अब इसके साथ में ये मौन पूरी तरह से हो गई है, महीने तक जाती है, 6 महीने तक जाती है। तो फिर हमने उसको एक चिट में लिख के दिया कि तुम अपना मौन खोल लो। तो उसने लास्ट में बोला कि दीदी, क्वेश्चन किया कि दीदी क्या क्या ये मौन, क्या ये प्रोसेस को मेरा ब्रेक करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी क्या मुझे, क्योंकि मेरे अपनी इनर जर्नी है ये। तो बच्चे 15 डेज, 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा अगर 15 डेज साइलेंस में रह सकता है, तो हम लोग बच्चे के अंदर की संभावना को भी देख सकते हैं कि उसके अंदर उसके बाद की क्या संभावना, उसकी बाद की संभावना के लिए, क्योंकि 5 मिनट मेरे पास हैं, तो उसमें इतनी सारी स्टोरीज। एक बार गुजरात से ही कोई हमारे पास एक टीम आई थी, तो बच्चों को जैसे छेड़ने के लिए, उनको खेलने के लिए बोला कि काफ़ी सारे क्वेश्चन के बच्चों से बोला कि बेटा 1 + 1 कितना होता है, उसने रिपीट करके बोला 1 होता है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर थे कि उसको लगा कि ये क्वेश्चन की क्यूरियसिटी से नहीं है, बच्चे को ऐसा फील हो गया 1 होता है। हमने सोचा 1 + 1 1 होता है, हम भी थोड़ा सा सरप्राइज थे कि 1 + 1 1 कैसे हो सकता है। दोबारा पूछा 1 + 1 1 कैसे हो सकता, काफ़ी बार रिपीट करने के बाद फिर उनको कैसे पूछना है, तो बोला कि 1 + 1 अंकल जी इसलिए होता है, अगर आपका और मेरा दिल मिल गया होता तो हम एक हो गए होते अभी। तो ऐसे ऐसे मतलब दर्जनों कहानियां जो कि बच्चों के, जो कि ये संभावना को दिखाते हुए, ये जो क्रिएट होता है उससे जो संभावना, उससे जो पॉसिबिलिटी बच्चे के अंदर से आ सकती है, ह्यूमन बीइंग के अंदर से आ सकती है। अगर हमारे पास अगर कोई पूछता है कि मैडम आपके पास कुछ जॉब होगा, तो हम बोलते हैं जॉब तो नहीं है, काम हमारे पास बहुत है, क्योंकि जॉब में और काम में बहुत फंडामेंटल डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि जब हम जॉब ढूंढते हैं तब हमारे अंदर वो कंपैशन नहीं रहता, वो करुणा नहीं रहती है, वो प्यार नहीं रहता। बच्चों के साथ काम करने के लिए, काम बच्चों के साथ जीने के लिए जॉब बोलना तो अपने आप में बहुत मुश्किल सा शब्द है, ये डाइजेस्ट भी नहीं होता है कि बच्चों के जॉब करते हैं, हम पढ़ाते हैं। तो मैं फाइनली ये समझ पाई कि एजुकेशन मीन्स लर्न टू सी, लर्न टू लिसन carefully, learn to see, learn to listen, learn to live in harmony. अगर हम हार्मनी में जीते हैं तो वो कंप्लीट एजुकेशन है। और ये हार्मनी में जीने के लिए लिसनिंग एंड सीइंग पे हम लोगों का बेस काम है। बेसिकली हम काम यहीं पे करते हैं कि बच्चा टोटल कंप्लीटली लिसनिंग, कंप्लीट सीइंग अगर उसके अंदर होगी तो उसके अंदर सीखने की जिज्ञासा पैदा होगी, उसके अंदर सीखने वाला मन तैयार। एजुकेशन का पूरा काम एक बच्चे के अंदर सीखने वाला मन तैयार करना है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा देखना है इस पूरे सत्र में। और इस तरह की जो चीज़ें निकल के आती हैं, घटनाएं निकल के आती हैं, संभावनाएं निकल के आती हैं, ये तो केवल हम लोगों के अंदर से कर्म का जो मैनिफेस्टेशन होता है, कुछ ना कुछ तो निकलना है, वो निकल के आता है। कोई सेवा कैफे खोलता है, कोई इस तरह के सर्कल शुरू करता है, कोई के रैदास मोची का काम करने लग जाता है, ये तो अभिव्यक्ति है। ये अगर जिसके अंदर से ये रिसीविंग है उसके अंदर से कुछ अभिव्यक्ति तो होगी। तो ये हमारे एक ह्यूमन की अभिव्यक्ति है कि वो जब एक स्टेज में पहुंचता है तो उसके अंदर से कुछ भी अभिव्यक्त होता है। मेनली जो एक मिनट में कि मेनली जो जीवन को एक्सप्लोर करने के लिए, करुणा को एक्सप्लोर करने के लिए, प्रेम को एक्सप्लोर करने के लिए हमको क्वाइटली बैठे हुए भी बिना बैठे हुए भी, बहुत सारे स्ट्रगल के बीच में भी बिना स्ट्रगल खुशी में भी, कि इसलिए कबीर दास का वो दोहा है ना कि दुख में सुमरन सब करे सुख में करे न कोई, सुख में भी दुख में करे न कोई, सुख सुख के टाइम पे हम लोग बड़े इत्मीनान में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं उस टाइम सिमरन सिमरन मतलब कि हम लोग उस टाइम भी सुने अपने आप को कि आप कंफर्ट जोन में आ गए हैं, अब सुनने की ज़रूरत नहीं है, भगवान को सुनने की नहीं अपने आप को सुनने की। और वो तो बात अलग सा इंटरप्रिटेशन के अंदर भगवान है बाहर भगवान है वो एक अलग इंटरप्रिटेशन है, लेकिन हम लोग अपने आप को सुनते हुए अटेंड करते हुए और साइलेंट ऑब्जर्वेशन एंड वॉलंटियरली एक्शन हम लोगों का मेन है कि साइलेंटली ऑब्जर्व करें चीज़ों को और वॉलंटियरली एक्शन करें कि हम लोगों के अंदर से अपने आप से निकलने वाला एक्शन हो। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन है तो उसमें
अर्चना जी काफ़ी अच्छा लगा आपका ये यात्रा जो अभी तक
आवाज कहाँ से आ रही
है यहाँ 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 इस तरह
ठीक है।
तो ये जो बच्चों के साथ एक्सपीरियंस हो रहा है आपके एक्सपेरिमेंट मैं तो कहूँगा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं आप, तो एक जो टिपिकल प्रॉब्लम आजकल के शहर के बच्चों में जो हम लोग देखते हैं या हम सब के अंदर में है कि हम मोबाइल से अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे आप कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं या फिर मोबाइल दिया नहीं जाता है या कैसे है मतलब, या कोई रेस्ट्रिक्शन अगर लगाया नहीं जाता होगा मुझे ऐसा लगता है, बट अगर कुछ इस तरह की आदतों से अलग करना है बच्चों को तो उसके बारे में कुछ बताइए आप कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस आपके।
तो ये शहर के बच्चों का नहीं गांव के बच्चों का भी बिल्कुल ऐसी स्थिति है। हम लोग जब मोबाइल पहुंच गया है तो शहर और गांव नहीं बच गया है, जब टेलीविज़न पहुंच गया है तो शहर और गांव नहीं बचा है, क्योंकि सेम इन्फॉर्मेशन सब जगह है, सेम एंटरटेनमेंट सब जगह है। तो हम लोग मेनली जो बच्चों के साथ में किसी तरह को कोई चीज़ को प्रतिबंधित नहीं करते हैं, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यूज़ करो आप नहीं करो। तो अभी हम लोगों का बच्चों के साथ में लेकिन जो प्रॉपर डायलॉग है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करना तो एक बहुत सुपरफिशियल बेस का वो है संवाद है डायलॉग है, लेकिन मोबाइल में आप क्या देखते हैं, आप लोग आज क्या सीखा आपने, क्योंकि उसका जो नेगेटिव पक्ष है, क्योंकि उसके लिए एक ज़रूरी बात है कि हर तरह का एनवायरनमेंट, अभी सुबह भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहा था कि बच्चों के साथ भी काम कैसे हो सकता है ऐसे, इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों के साथ में इन्वायरमेंट बनाना है कि वो डायलॉग को, माँ पिताजी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो अभी माँ पिताजी को सुनने के लिए बच्चे तैयार नहीं रहते हैं, सुनने के लिए मतलब जो वर्बल डायलॉग है उसके लिए भी तैयार नहीं रहते हैं। तो बहुत डीप लिसनिंग के लिए तो बिल्कुल थोड़ा सा और यात्रा का काम है। तो हम लोग उनके साथ में डायलॉग करते हैं, हम लोग उस जो बच्चा अगर गाय की चोट को महसूस करता है, जो पेड़ के बढ़ने को महसूस करता है, जो जिसने सूरज के उगने को महसूस करता है, उस बच्चे के लिए मोबाइल फ़ोन बहुत इतना इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, उसके लिए इतना मज़ेदार चीज़ नहीं है। कि अगर अभी मेरा 30 बच्चों का ग्रुप राजस्थान में है, हम लोग 30 बच्चे ही बोलते हैं, हम लोग करीब 20-25 गवर्नमेंट स्कूल के साथ में भी काम करते हैं, लेकिन वो काम हम लोग एक अलग आधार पर करते हैं, कोई ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको स्प्रेड करने के लिए उसके साथ में, और वहाँ के जो लोकल अथॉरिटी है वो काफ़ी हम लोगों के पास आ करके, और आप लोग अपना किट स्कूल में भी पहुंचाओ, आप लोग स्कूल में भी काम करो, लेकिन हमारा जो इंटेंस काम है वो ये 30-35 बच्चों के साथ में है। तो मोबाइल फ़ोन हटाना ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, लेकिन मोबाइल फ़ोन के बारे में बात करना और थोड़ा सा क्योंकि इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह के इन्वायरमेंट क्रिएट होंगे तभी बात हो पाएगी। इस तरह के सब्जेक्ट पे भी आप वडोदरा में कोई ऐसा कोई ऐसा सम्मेलन है कि आप उसमें इनर प्रोसेस, आप इनर जर्नी की बातचीत करना वैसे जैसे संभव नहीं है, वैसे ही मोबाइल फ़ोन की बात केवल ऐसे करना है कि आपको यूज़ करना ठीक नहीं है, यूज़ करना ठीक है, उसमें अच्छी चीज़ें गंदी चीज़ है, अब मोबाइल फ़ोन में बच्चे क्या देखते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं जिससे उनके अंदर से इतना वो अपने एंटरटेनमेंट को, अपने अंदर के जो जो भी इमोशंस है उनको देखने के लिए, उनको उनको रिलेट करने के लिए देखते हैं। तो हम उस सब्जेक्ट पे भी बच्चों से बात कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट पे उसके लिए माहौल बनाएं, बात भी करना उससे उसके लिए माहौल बनाएं, बात करने के लिए माहौल बनाएं।
अर्चना जी, ये यहाँ से सामने,
यहाँ से ना लाइट पड़े, हाँ जी, हाँ जी, देख,
ये 30 बच्चे जब बाहर निकलते हैं,
हाँ जी,
तो उनकी क्यूरियोसिटी क्या रहती है? डोंट दे फील दैट दे आर गेटिंग लॉस्ट, कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आती है या नहीं?
कभी भी नहीं, बच्चों के अंदर ऐसे देख के ये ऑनेस्टली के बच्चों को ये देख के दया आती है कि ये बच्चे क्या सीखते हैं, ये बच्चे क्या जीते हैं। सीरियसली कि उन बच्चों को बहुत कंपेशन है इसको लेकर के क्या जीते हैं। हम लोगों ने एक छोटे से बच्चे के साथ भी कोई चीज़ इम्पोज नहीं किया है कि आप ये खाओ ये नहीं खाओ, आप ये करो नहीं करो, लेकिन हम उनके जो जो सेल्फ लर्निंग वाला उनका सेशन होता है उसमें हम केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड बातचीत करते हैं, डायलॉग में उनके अपने इनर जर्नी को लेकर बातचीत करते हैं। तो जैसे बच्चों ने 6, 7, 8, 9, 10 साल के बच्चों ने बोला, दीदी आपके साथ एक मीटिंग करना है। हमने कहा बोलो कि मीटिंग, हमने सोचा बड़े लोगों से सुनते हैं मीटिंग जैसा है, और अदरवाइज हमारे यहाँ पे कल्चर डायलॉग का मीटिंग करना है 7, 8, 9, 10 साल के बच्चे। तो पिछले 2 साल से वो बच्चे कोई भी एक जंक फूड नहीं खाते हमसे ये बोल करके कि ये जो जंक फूड बनता है ना आप हम लोगों के किचन में क्यों आता है। हमने कहा कि अगर यहाँ किचन में नहीं देंगे तो तुम बाहर मांगेंगे, घर पे मांगेंगे। तो बोला कि वो 30 बच्चे हमारे साथ ही रहते, 1 साल में 1 महीने के लिए घर पे जाते। तो साल के दोनों महीनों में 6 साल 8 साल के बच्चे के लिए जब मौका मिलता है और माहौल मिलता है वो वापस शुरू हो जाते हैं। तो उनके घर वाले बोलते हैं कि इन्होंने, मैडम ये तो बोलते हैं कि हम बिस्किट भी नहीं खाते, नमकीन भी नहीं खाते हैं, चाय तो पीते ही नहीं है। तो एनीवे कि जिस तरह के भी पहले पूछते हैं कि दीदी ये जंक फूड है तो खाएंगे नहीं खाएंगे, जबकि उसी सेंटर पे जो कुछ बड़े लोगों के ग्रुप है उसमें से लोग खाते हैं, लेकिन ये ग्रुप ने अपना बोला कि वो जंक फूड नहीं खाएंगे। और दिल्ली बॉम्बे हम सब जगह उनको लेके जाते हैं तो वो बच्चे जंक फूड नहीं खाते। तो वो उनके सामने इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर नहीं आ सकता, वो इसलिए क्योंकि उनको इस बात की समझ है, इस बात पर उनका रेगुलर बातचीत है। तो वह उनके अंदर ये ज़रूर है कि ये लोगों को देख करके देखती कि बच्चों को क्या खिलाते हैं, जहर खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं, खाने को लेकर के, देखने को लेकर, उनके सोच को लेकर के, समझ को लेकर के, कि अगर किसी को, किसी बच्चे के को पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है तो जिस बच्चे के अंदर कंपेशन होगा उसको इस बात की होड़ नहीं होगी मुझे भी जलाना था एक, या जिस को मालूम है कि इस पूरे सिस्टम में एजुकेशन है या सोसाइटी का जो सिस्टम है उसको आगे बढ़ने के लिए कितनी तरह की चीज़ों को पीछे करना पड़ता है, उनको इस बात की होड़ नहीं है, हम लोग साथ में कैसे जा सकते हैं, ये उनका क्वेश्चन है, ये उनका एक्सप्लोर।
Maybe the last question.
Here. What is it?
Tail pass, not me.
What is it? Okay. Hello. Good evening. आप लोग मेडिटेशन और साइलेंस प्रैक्टिसेस बच्चों के साथ यूज़ कर रहे हैं जैसे, बट हियर वी बिलीव के स्पेशली जब ये टाइप के अटेम्प्ट्स हो भी रहे हैं यहाँ पे आसपास, तो ऐसा हो रहा है कि रादर नेगेटिविटी क्रिएट हो रहा है उसकी तरफ, एंड देर इज़ अ बिलीव के मतलब बच्चे लाइक एक्टिविटी एंड दे वुड नॉट प्रेफर यू नो स्टिलनेस एंड स्टफ लाइक दैट। सो व्हाट वुड बी द राइट एज और टू स्टार्ट सम प्रैक्टिसेस लाइक दैट विद चिल्ड्रन?
तो मेडिटेशन क्योंकि अभी मेडिटेशन वर्ड ही जो यूज होता है और उसके टेक्निक्स बोलते हैं, मेडिटेशन के टेक्निक्स, अगर मेडिटेशन टेक्निक्स में किया जाएगा तो फिर बच्चे के साथ भी, कि बच्चे को हम बोलेंगे अपने थॉट प्रोसेस को सुनो, क्योंकि बड़े के साथ में हम ऐसे बोलते हैं या बीच में, सर के बीच में ज्योति देखो या पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी को देखो, तो बच्चे के लिए बिल्कुल मुश्किल बात है। हम बच्चे के साथ में मेडिटेशन के लिए क्या करें, हम लोग मेडिटेशन वर्ड यूज़ भी नहीं करते क्योंकि ये यहाँ पे फेमिलियर है मेडिटेशन वर्ड से, तो इसलिए मैंने यूज़ किया। हम लोग लिसनिंग एंड सीइंग, कि बच्चे को, हमारे पास में नेचर बहुत रिच है तो हम लोग नदी के पास ले जाते हैं, नदी का साउंड सुनो, एकदम क्वाइट बैठ करके और नदी का साउंड सुनो। अभी हमें बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें कि आप नदी का साउंड सुनो, आप लोग बारिश आती है तो उसके जो टप टप है छत से गिरते हुए उसके आवाज़ सुनो, हमारे यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ सुनो, बिना किसी नाम दिए हुए उसको कि ये कौन सी बर्ड बोल रही है, ये कौन सी नदी का पानी है अभी कौन, तो क्योंकि वहाँ पे फिर हम लोगों का इमेज शुरू होती है आने। तो बच्चों के साथ में इस बात की हम चर्चा भी नहीं करते हैं, वो नाम ले नहीं ले, तो बच्चों के लिए तो जब माँ के गर्भ में बच्चा है माँ तब से सुनना शुरू करे, ये हमारी कोशिश है कि तब से बच्चा सुनना शुरू करे ध्यान, तब से माँ सुनना शुरू करे, और बच्चा जब माँ के लैप में भी आता है ना तो वो थपकी दे करके उसको वो बीट सुनाना शुरू करे, और उसके बाद में वो फील करना शुरू करे उस बच्चे को, और उसके बाद में जब वो सुनना क्या है ये वर्ड को समझने लायक हो तो उसको नेचर प्रकृति की आवाज़ों को सुनाएं, उसको चिड़िया की आवाज़ और नदी की आवाज़, हवा की आवाज़ महसूस करना, उसका फील महसूस करना, उसका जब हम ज़मीन पे चलते हैं खाते हैं तो खाने में चार उंगलियां मुंह तक जाती हैं, उसको फील करना महसूस कराने के लिए उसके लिए एनवायरनमेंट तैयार करें, क्योंकि अदरवाइज वो नहीं सुनेगा। आप बोलेंगे कि इसको सुनो बेटा, वो नहीं सुनेगा जब तक उसको माहौल नहीं मिला, जब तक आप भी घर में रेगुलर उसके साथ में बैठ के आप भी वैसे ही नहीं फील कर रहे हैं, केवल बोलने के लिए नहीं, आप भी वैसे ही नहीं फील कर रहे, तो बच्चे के साथ तो कोई एज लिमिटेशन नहीं है मेडिटेशन के लिए, लिसनिंग के लिए तो कोई एज लिमिटेशन नहीं है, सीइंग के लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है। हमारे पास में एक बच्ची आई है जो बिल्कुल आँख भी ढंग से नहीं देख पाती थी, तो हम घंटे घंटे बिठा करके उसको बस झरने को देखते रहो, उस झरने पे कितनी कहानी बोलते थे उसके साथ में, वो हमारा एजुकेशन प्रोसेस भी था बच्चे के साथ में। और अभी उन्हीं बच्चों की बात कर रहे हैं जो बच्चे अभी बैठ करके 10 दिन 15 दिन साइलेंट बैठ गए बिना बातचीत किए हुए, कितना मुश्किल होता है। आप लोग घरों में, हम लोग बच्चों के साथ में रहते हैं, 2 मिनट बच्चे को चुप कराना, बोलते हैं अर्चना जी हम तो 2 बच्चों को नहीं संभाल पाते, आप 30 बच्चों को लेके पूरे देश भर में भी घूम लेते हैं, तो हम कहते हैं इतने मुश्किल बच्चे ही नहीं है कि हम, वो हमको संभालने लग जाते हैं कि दीदी आप ठीक है ना, आपको पानी मिल गया आपको, हमको नहीं संभालना पड़ता है उनको हाँ, जो हमारा एक्सपीरियंस है ये कि टिकट निकालना मुझे पता है कैसे निकालना, उस 6 साल के बच्चे को नहीं पता है, ट्रेन में फर्स्ट टाइम बच्चा बैठ रहा है उसको कैसे बैठना, फ्लाइट में बैठना कैसे बैठना वो मुझे पता है, जो मेरे मेमोरी में एक्सपीरियंस है वो तो मुझे पता है तो मैं बता सकती हूँ, अदरवाइज जो फ्लावरिंग है और उससे जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बच्चे के साथ, हर बच्चे के साथ अलग है जो मुझसे कई ऊपर है।
थैंक यू अर्चना जी,
थैंक यू सो मच।
आई थिंक शी इज अ वेरी जेंटल वुमन। अभी मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, जब विनोबा को बोलते थे कि अगर कोई सुन नहीं रहा तो उनको रिस्पॉन्ड कैसे करें, तो वो बोलते जेंटल तरीके से, फिर वो बोलते कि अगर फिर भी नहीं सुने तो जेंटलियर, और फिर भी ना सुने तो जेंटलीस्ट। तो आई थिंक अर्चना एम्बॉडीज दिस। उन्होंने जो बात की, एक और एक एक ही होता है।